हरे कृष्णा। आप सबका 23 फरवरी को उद्धव क्यारी इस पवित्र स्थान नंदगांव में स्वागत है। जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। पुकारो, दिल से पुकारो। हे राधे हे दयालु, इस स्थान का सार अगर आपको समझना है तो यहाँ पर हृदय से भजन करो, फिर ये स्थान अपना सारांश आपके लिए प्रकट करेगा। उस लिए प्रार्थना करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे इस पवित्र स्थान को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपका जो सार है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, आप हमारे लिए प्रकट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे राधे हे वृषभानुनंदिनी करुणामयी राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधे हे वृषभानु नंदिनी करुणामयी राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम उद्धव क्यारी धाम की जय श्री उद्धव जी महाराज की राधा रानी और गोपियों की नंद बाबा यशोदा माई की नंद भवन की श्री कृष्ण बलराम की हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त बृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय श्री राधे, जय नंद नंदना, जय जय गोपी जन मन रंजना, जय श्री राधे, जय नंद नंदना, जय जय गोपी जन मन रंजना, जय श्री राधे, जय नंद नंदना, जय जय गोपी जन मन रंजना। हरे कृष्णा। श्री ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है, हम जब यहां पर आते हैं या आना चाहते हैं तो केवल यहां का प्रेम का रहस्य जानने के लिए हमको आना चाहिए। बाकी कथा, फिलॉसफी, बाकी सब तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन उन सब कथा और तत्व ज्ञान फिलॉसफी का उद्देश्य एक ही है कि हम इस प्रेम के रहस्य को समझें। नहीं तो सब कुछ समझ में आएगा लेकिन वो रहस्य नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी कथाओं का, सारी साधनाओं का, सारी तपस्या का, नियम पालन का, सारी सेवाओं का, सारे जप का एक ही उद्देश्य है, टू अचीव लव ऑफ गॉड इट, प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रति। रूप गोस्वामी बताते हैं कि स्मर्तव्यम सततम कृष्णम विस्मर्तव्यम न जातुचित। सबसे श्रेष्ठ जो तत्व है भक्ति का वो यह है कि सदैव कृष्ण को याद करें और कभी भी कृष्ण को ना भूलें। और उसके आगे का जो लाइन है उसका मीनिंग यह है कि इसके ऊपर कोई रूल नहीं है, वो नहीं बन सकता है। तो यही प्रेम विद्यालय में ठाकुर जी ने द्वारका से उद्धव जी को भेजा था, मथुरा से भेजा, सॉरी, बस आपकी बात सही है। मथुरा में कंस को मारने के बाद में, है ना महाराज जी? हाँ, ये अभी मैंने लेटली पढ़ा था, यह बात सही है। वो मथुरा से उनको यहाँ भेजा था। उद्धव जी बड़े अच्छे भगवान के भक्त थे, भगवान के चचेरे भाई भी थे, भगवान के मित्र भी थे, भगवान के भक्त भी थे, उनके मंत्री भी थे, उनके सखा भी थे, सब कुछ इतने निकट थे और बड़े ज्ञानी थे, हमशकल थे, उनका रंग, उनका रूप के जैसे कृष्ण जैसा ही था, क्योंकि वो इतने भावना से कृष्णमय थे, कृष्ण ही थे वो दिखने में, और बड़े बृहस्पति के शिष्य थे वो, बड़े विद्वान थे वो, उनको सब कुछ ज्ञान था, योगा का, योग का ज्ञान था, हर प्रकार के दर्शन का ज्ञान था, हर चीज को जानते थे वो। ऐसे कोई केवल भावना वाले भक्त नहीं थे वो, बिल्कुल उनका जो अधिष्ठान था भक्ति का वो एकदम गहरे तत्व ज्ञान के ऊपर आधारित था, और वैसे प्रेमी भक्त थे भगवान के। और एक भक्त के लिए भगवान का इतना सदैव का, निकट का, उत्कट संग प्राप्त होने के ऊपर और क्या प्राप्ति हो सकती है? हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान का संग मिले, और वो उनको प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। खाना पीना, बैठना सोना, हंसी मजाक, शिकार खेलना, मंत्रणा करना, दरबार में बैठना, हर चीज की, हाँ, शयन गृह में बैठना, शयन गृह में सोना, हर चीज साथ में। कोई व्यक्ति सोच भी सकता है कि इसके आगे भी कोई प्राप्ति है लाइफ में? तो इसी बात को पकड़कर गोपियों को सांत्वना देने के बहाने खत देकर उद्धव जी को कृष्ण ने मथुरा से भेजा। तो वो भगवान ने उनको उनकी स्थिति बताई थी, ओरिएंटेशन दिया था पूरा, यहाँ पर क्या स्थिति है कि हमारी गोपियाँ, हमारे माता पिता, हमारे ग्वाल बाल, हमारे गैया, हमारे मोर, हमारे सब सखा जितने भी यहाँ के हैं बड़े व्याकुल हैं, बड़े दुखी हैं, वो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, वो बड़े दुखी हैं वहाँ पर, उनको आप जाओ थोड़ा सांत्वना करके आओ। जैसे कोई डॉक्टर को बता दिया कभी आपको एक जगह भेज रहा हूँ, वहाँ पर सब लोग मलेरिया से बीमार हैं, उस गांव में कुछ करोड़ों लोग हैं, सब लोग हाई फीवर और ठंड से परेशान हैं, उनको सब मच्छर काट के बीमारी हो गई है। तो डॉक्टर को आइडिया था कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, कितना बड़ा काम है, उसमें क्या क्या करना है, तो अपना वो प्लानिंग कर लेता है कि भाई इतनी दवाई लूँगा साथ में, इतना इतना लोगों को ऐसा ऐसा बताऊँगा और ऐसे ऐसे करके उनको रोग से मुक्त करूँगा। तो बता दिया कि यहाँ की स्थिति कैसी है, यहाँ पर कैसा एपिडेमिक है। एपिडेमिक मतलब क्या है? एपिडेमिक ऑफ सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की विरह का बीमारी यहाँ पर सब लगा हुआ है सबको। तो वो सोच रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने मुझे बताया, अभी मैं उसका बहुत ढंग से इलाज करूँगा। मैं चाहूँगा उनको पहले तो ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्ञान का एक प्रभाव होता है, जब किसी को ज्ञान होता है ना तो वो विरक्त हो जाता है। तो ज्ञान का मतलब क्या, वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है सब मिथ्या है। तो शरीर के वस्तुओं में ज़्यादा धन मन लगाना नहीं है। आद्यंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, जिसको ज्ञान हो गया वो समझ जाता है कि जिस चीज़ का आदि है और जिस चीज़ का अंत है उसमें हमको दिल नहीं लगाना चाहिए। जिसको वाकई में ज्ञान हो गया है वो ये समझ जाता है और वो उसमें दिल नहीं लगाता है। तो मैं उनको ज्ञान दूंगा, बड़े दुखी हैं वो, रो रहे हैं सब लोग, तो मैं उनको ज्ञान दूंगा ये सब नश्वर है, आत्मा अमर है और ये सब दुख नहीं करना चाहिए। और हाँ, वो क्या भगवान ने कहा था अर्जुन को कि गता सुन गता शुमश्च नानु शोचंती पंडिता। पंडित का लक्षण क्या है, जिसको ज्ञान हो गया है वो कभी भी कोई गया कोई आया, कोई जीवित है कोई मृत्यु हो गया है, क्या कुछ खो गया है कुछ पा गया है, इसका चिंतन नहीं करता है, उस पर दुख भी नहीं करता है कभी। न अनुशोचंती पंडिता, कभी भी सुख शोक नहीं करता है वो, न सोचती न कांक्षती, किसी की अपेक्षा नहीं करता है किस चीज़ की, कुछ चीज़ नहीं है तो चाहता नहीं है, और जो थी वो खो गई उसके लिए रोता नहीं है वो। तो इनका क्या खो गया था, कृष्ण खो गए थे इनके, चले गए यहाँ से दिल लगाकर, रो रही हैं। तो ये सब भावना के सर पर उथल पुथल हो रही है। हम उनको ज्ञान देंगे, ज्ञान देकर उनको पूरा पंडित बना देंगे, और पंडित बनाने के बाद भी दुख से मुक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, फिर कैसा दुख रहेगा। और मैं उनको अगर इससे भी नहीं बनी तो बाद में योग सिखाऊंगा उनको, योग सिखाकर उनका वायु को मैं नियंत्रित करूंगा, उनके शरीर के जो वायु हैं प्राणायाम करके उनके वायु को ऐसे संतुलित कर दूंगा, उनको दुख होगा ही नहीं। योगी कैसे होते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता है, कोई मरे कोई जिए कोई आए कोई गया, उनको तो मस्त रहते हैं, वो कोई चीज़ का लगाव नहीं होता है। तो मैं उनको योगी बनाऊंगा। ऐसे अपना अपना डॉक्टर प्लानिंग करके आ रहा है ट्रीटमेंट क्या दूंगा। जब यहाँ पे आते हैं तो वो तो राज दरबार से आ रहे हैं ना, वो तो रथ में आ रहे हैं, बिल्कुल सुंदर उनका रूप था और बिल्कुल कृष्ण जैसे ही थे, श्याम सुंदर जैसे थे वो। तो जब आए वो तो सब गोपियाँ भाग के गई कि कृष्ण आ रहे हैं। देखा ना उन्होंने, सांवले रंग के श्याम वर्ण के, उनको पता था कि अभी वो तो दरबारी हो गए हैं, दरबार में रहते हैं तो रथ में आएंगे, तो रथ में आए तो भी वो कृष्ण ही होंगे। जब बहुत पास में देखा तो समझे कि ये कृष्ण नहीं है कोई और है, तो बहुत शर्मा गई वो, दूर चली गई। फिर वो देख रहे थे आते आते सब कैसा सुन्न हो गया है, सन्नाटा सब जगह पर, सब लोग हैं लेकिन सब चित्रपट की तरह हैं। समझ में आया, चित्रपट कैसा होता है सुन्न, चित्रपट में कोई गतिविधि नहीं होती है, चित्रपट वैसे रहता है जैसे है। तो सब लोग चित्रपट की तरह मतलब ऐसे ही सुन्न पड़े हुए हैं। एक भक्ति में अष्टविकार का वर्णन किया गया है, उसके अंदर वो स्तंभ नाम का एक विकार है। जब अष्टविकार का अनुभव होता है तो स्तंभ यानी कि वो एकदम स्टंड हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, ऐसे ही लकड़ी के समान हो जाता है। जैसे कल हमने बताया था ना आपको, दाऊ जी जब वो देख रहे थे चंद्र सरोवर का रासलीला, तो ढोक देने के पोजिशन में थे, उधर ही स्तंभ हो गए वो, पूरा एकदम कड़क हो गए भाव विभोर होकर। तो ऐसे सब ब्रजवासी यहाँ पर स्तंभित अवस्था में थे। उनको लगा बहुत ज़्यादा दुखी है लोग, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इनको। तो पहले वो नंद बाबा के पास जाने वाले थे, लोगों से उन्होंने पूछा कि नंद बाबा का घर किधर है। तो उन्होंने कहा कि ये दो नदियाँ बह रहे हैं, नदियाँ इनके किनारे किनारे चले जाओ, उनके घर पहुंच जाओगे। बढ़िया है, बहुत नदी जा रही है तो किनारे किनारे कितना आसान है ना रास्ता। तो वो नदी पहाड़ के ऊपर से आ रही है, तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ गए। चढ़ते चढ़ते गए तो नंद भवन के दरवाजे में पहुंच गए। ये तो बढ़िया गाइडेंस दिया उन्होंने हमको, सीधे दरवाजे में। फिर अंदर चले गए तो क्या देखते हैं, नंद बाबा और यशोदा के आँखों से जो आंसू आ रहे हैं उससे वो दो नदियाँ बनी हुई हैं जो नंदगांव में बह रही है। वो देख के दंग रह गया, अरे बाप रे, कि जब से कृष्ण गए हैं तब से इनके आंसू रुके कहाँ हैं, तब से चल रहे हैं। ऐसा इनका स्थिति देखकर वो दंग रह गए। फिर उनका जो वार्तालाप भागवत में दिया है, कई ग्रंथों में दिया है, कैसे उनको देखकर यशोदा मई पूछती है कि हमारा कान्हा कैसा है, क्या वहाँ माखन भी उसको मिलता है, कोई माखन की सोचता भी है उनके बारे में, कोई तो देता भी है उसको, मक्खन छाछ की याद आती है क्या उनको, क्या उनको मैया की याद आती है, क्या बाबा की याद आती है, गैयाओं की याद आती है, क्या वो मुरली बजाते हैं, ऐसे हजारों सवाल करती हो। उनमें से किसी भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं था, वो तो अलग मूड में आए थे ना, वो देख कर एकदम दंग रह गए। वो यशोदा माई उनको जब भोजन कराती थी ना जब छोटी उम्र में, कभी कुछ सख्त कर टाइप का होता है ना भोजन, लड्डू होता है समझो, कभी कुछ सख्त होता है कोई आइटम, तो यशोदा माई उसको अपने मुंह में डालकर चबाकर मुलायम करके निकाल कर फिर कन्हैया को खिलाती थी। तो जब द्वारका में वो कई रानियों के पति बने ना, तो हर एक रानी लक्ष्मी है उनकी, और तो रसोई में तो बहुत कुशल है, रुक्मिणी उनकी शिरोमणि है, तो उनको 56 भोग बना के खिलाती थी, अपने खुद हाथ से परोसती थी, खुद से हवा देती थी और पूछ पूछ के प्रेम प्रेम से खिलाती थी उनको। तभी भी उनको समझता था कि आनंद तो ले रहे हैं लेकिन पूरा आनंद मिल रहा है ऐसा लग नहीं रहा है, तो वो पूछते थे कि कुछ कमी है क्या हमारे भोजन में, कुछ कुछ हम लोग इम्प्रूव करें, क्योंकि वो इतनी अच्छी भगवान की भक्त थी, सब लोग भगवान को हर तरह से बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट सेवा करना चाहती थी। इसलिए वो ऐसा नहीं थी कि क्या प्रभु आप तो हम लोग इतना प्रेम से बनाते हैं आप तो फिर भी आनंद नहीं ले रहे हो, और क्या करें आपके लिए, इतना तो करने के बाद में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे। वो कोशिश कर रहे कि और अच्छा बनाए, तो उस भावना से उनको पूछ रहे। तो कह रहे हैं कि देखो रानी, इसमें तो जो स्वाद है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता मैं, इतना सुंदर स्वाद है इसके अंदर, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया है, यू कम दिस साइड, आई वांट टू सी यू, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। सो बहुत आनंद आ रहा है मुझे, आपके प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो मुझे मैया सख्त प्रसाद मुंह में घुलाकर मुलायम करके निकाल कर जो मुझे खिलाती थी उसका स्वाद तो इसको नहीं आ सकता है। तो वो कुछ बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन हकीकत बता रहे हैं, ऐसा यशोदा माई का प्रेम था। आप जानते हैं ना, वो 100 गाय उन्होंने बना के रखी थी पद्मगंधा, इतनी मेहनत से पद्मगंधा घास को खिलाते थे उनको, फिर वो गाय उसको खाती थी, उसके दूध को भी कमल की खुशबू आती थी, फिर दही को भी, फिर उसमें मक्खन निकाल के और संपृक्त कमल की सुगंध उसमें से आती थी और वो मक्खन उसको खिलाती थी। वो इतना मेडिटेशन था, ऐसे कहते हैं कि यशोदा माई जब यहाँ पर भी थी तभी भी, जब कृष्ण यहाँ पर सॉरी थे कृष्ण थे तभी भी यशोदा माई की आंखें कभी भी सूखी नहीं थी, हमेशा अश्रुओं से भरी थी और अश्रु टपकते रहते थे और हमेशा उनके स्तनों से दूध निकलते रहता था कृष्ण की याद से। केवल कृष्ण तो बड़े हो गए थे फिर भी उनका भाव और वात्सल्य इतना तीव्र था कि हमेशा आंखों से आंसू निरंतर और स्तन से दूध की धार। जब वो जाते थे गौ चराने के लिए तो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खिड़की से क्या देखते हैं, सूरज ढल क्यों नहीं रहा है, इतने देर से क्यों चल रहा है, उसको ढलना चाहिए जल्दी, क्योंकि ढलेंगे तो फिर जल्दी आएंगे लौट के वो सूर्यास्त के समय। दिन भर यही काम है, विदा करते समय दुख होता था उनको, और दिन भर ये चिंतन कहाँ होगा, कहाँ चलता होगा, कुछ संकट में तो नहीं आया होगा, क्या होता होगा, कहाँ चलता होगा, भोजन किया भी होगा कि नहीं, जा सखी जा छाक ले जा, भूखा होगा, बार बार आंगन में आकर खिड़की में से आकाश देखना, खिड़की में देखना, नीचे देखना कहाँ पर है। जब बाल्यावस्था में थे तो ऐसा नियम था कि नंद भवन के सबसे चोटी पर जाने के बाद में जहाँ तक नज़र पहुँचती है वहीं तक जाना है, ये नियम था। वत्सपाल वत्स चलाने, बाल गायों को चलाने के समय का नियम था। तब तो दिन भर यही काम था, दो दो मिनट जाके देखना है कहाँ पर है, अरे वो तो खदीर वन में, अरे वो तो इधर है, अरे वो तो उधर है, यही दिन भर काम, बार बार जाके देखना कहाँ पर है, बार बार देखना। लेकिन जब बड़ी गायों का गोपाष्टमी में दे दिया जिम्मेदारी तो फिर वो नजर से ओझल हो गया ना, दूर जाने लगे। तो फिर यही काम था दिन भर, सूरज को देखना कब उतर रहे हैं, कब उतर रहे हैं। उस सूरज को उतरने के बाद में, उतरने नहीं सूरज अभी, अभी वो उतरने के साइड में आ गए, मतलब पश्चिम दिशा में झुक रहे हैं अभी, अभी तो पूरा टाइम बहुत बाकी है उसके लिए। तब से इनका तैयारी, अभी चलना है, अभी चलना है, यही सखियों तो थाली बनाना, दीपक चलाना, उसके अंदर फूल रखना, मिठाई रखना, मक्खन रखना, ये रखना, खुशबूदार द्रव्य रखना, आरती कराना है अपने को, घी लगाना, दीपक लगाना उसके अंदर, वो तैयार कर, चलो चलो चलना है। अरे तो वो बोल रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है। नहीं 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 वो ऊपर चढ़ने तक कौन रुकेगा, हम नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे आ गए हम ऊपर है, कैसा स्थिति है, नहीं हम नीचे जाएंगे, उनको नीचे रिसीव करेंगे। तो वहाँ जगह है नंद बैठक, वो नीचे उतर आते थे सब तैयारी करके, वहीं उनका स्वागत करते थे, और वहीं तो आधी लीला वहीं होती थी, क्या हुआ आज, किसको कैसा हुआ, इसने ऐसा किया, जूठन खाई, ऐसा हुआ, ये गैया ने वैसा किया, इसने ऐसा किया, फिर वो राक्षस आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ग्वाल बाल बता रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं, फिर दोनों की चुस्त क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन चल रही है, कौन मिलेगा, मैं बोलूँ कि तू बोलेगा, मैं को दोनों गोद में बैठे हैं, मैं ये बाबा के एक गोद में कृष्ण, एक गोद में बलराम जी, पैर को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, और ऐसे ऐसे बाबा सुन रहे हैं इधर से, अच्छा 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 अच्छा, दोनों बालकों का बात सुन रहे हैं। इतना सुंदर समय था, तो सब उसकी याद आ रही है क्या, ऐसे भैया पूछ रही है। अभी इनको पता नहीं कि माखन खाते कि नहीं मथुरा में, द्वारका में माखन मिश्री सब ब्रज में ही है, माखन मिश्री मुरली मोर मुकुट सब ब्रज में, और जूता वूता सब वहां पर, जूता राजवस्त्र, यहाँ पर तो वनमाला, बिन मुरली बनमाल चंद्रिका, बिनते काउ काम हमारो मुरली वारो शाम। ये सब यही था केवल, मुरली माखन वैयाचरण सब यह था। तो एक प्रसंग है, मैं आपको बताता हूँ अभी कैसा नंद बाबा का और शोधमाई का प्रेम था। तो जब अक्रूर जी आए तो अक्रूर जी उनको ले गए, बड़ी लंबी हृदय द्रावक कथा ये, नंदगांव के लिए अक्रूर का ले जाना बहुत दुख भरी कथा है उनके लिए। एनीवेज तो यहाँ जाते हैं, कंस को मारते हैं, फिर जब वो सुनते हैं कि वो नंद बाबा, सॉरी यशोदा माई, उसमें आपको पता होगा शायद कि नंद बाबा गए थे, यशोदा नहीं गई थी, नंद बाबा और बहुत सारे ग्वाल बाल गए थे, छोटे बाल बाल भी गए थे, उन्होंने बहुत आनंद लिया कृष्ण के साथ मथुरा में। तो जब वो अखाड़े में गए और कंस का वध किया गया, फिर उग्रसेन को मुक्त किया गया जेल से, फिर माँ बाप को मुक्त किया गया, फिर माँ बाप के चरणों में गिरे और कहे मैया मैं तो आपकी कुछ सेवा नहीं कर पाया, इतने साल हो गए आप जेल में तड़पते रहे, मेरा संग भी नहीं मिला, मैं आपका वात्सल्य का अनुभव भी नहीं कर पाया, सेवा नहीं कर पाया, अभी आप बताइए क्या आपकी इच्छा है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूँगा। तो मैया के बाबा के चरणों में गिर गए, देवकी और वसुदेव की। तो उन्होंने कहा अभी यही रहो, आपको गुरुकुल भेजना है, आपको तो संस्कार भी करने हैं ना बहुत सारे, तो वो तो हुए नहीं हम हमसे, अभी तो जेल में ही थे, अभी तो हमारा भी कर्तव्य पूरा करना है हमको, आप रहो। जैसे ही ये सुना इस बात को तो सब ब्रजवासियों के हृदय टूट गए, चकनाचूर हो गए, क्योंकि उनको अक्रूर ने उनको ले गए, वो दुख बहुत हुआ था उनको कि ले गए, लेकिन ये पता था कि आएंगे, बोल के गए ना वो आएंगे। अरे जब जा रहे थे ना यहाँ पर तो गोपियाँ रस्ते में लेट गई पूरी, बोले नहीं जाएंगे आप, या तो जाएंगे तो हमारे ऊपर रथ लेके जाइए, हमारा जीवन समाप्त करके जाइए, हम तो नहीं जी सकते आपके लिए। भगवान ने उनको समझाया है कि भैया ऐसे नहीं होता है, यकीन रखो मैं आऊँगा, पल्सों आऊँगा, शीघ्र ही आगस्य, जल्दी जल्दी आ जाऊँगा। तो उधर एक गाँव है सी पल्सों, कल मैं दिखाया था इनको, उसमें ये मुलाकात हुई थी। उसके पहले रथ में ही उधर लेट गई थी, रथ सामने से, तो बहुत मुश्किल से उनको बाजू में किया। और भगवान ने क्या किया, वज्राघात करवाया आकाश से। इतना भयंकर ध्वनि और इतनी भयंकर घटना हुई वो, कि वज्राघात के ध्वनि से सब गोपियां बेहोश हो गई। और उस स्थिति का फायदा लेते हुए अक्रूर को बोले, अक्रूर चलो अभी जल्दी, इसकी ये बहुत अच्छा मौका है निकलने का, तो निकलना मुश्किल है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम बहुत है। तो वो बेहोश अवस्था में ब्रजवारी नाम का गांव है, यहाँ से सी पल्सों के रास्ते पर शॉर्टकट है उसका, वहाँ पर इतना अच्छा रास्ता नहीं है, बहुत अभी सुनसान जगह है वो, बहुत सुंदर लेकिन बहुत उत्कट जगह है। वहाँ पर गोपियों को भगवान ने वज्राघात ऐसे ही करवाया परस्पर, और गोपियाँ सब बेहोश होकर गिर गई, और ये भाग गए। लेकिन जब भाग गए तो कुछ देर बाद वो होश में आई और देखा तो कृष्ण नहीं है। अभी आप बोलिए कि आदमी चलता फास्ट है कि रथ फास्ट चलता है? रथ चलेगा ना, अभी आप मोटरगाड़ी जाएंगे तो मोटरगाड़ी चलेगी कि मैं चलूंगा? रथ फास्ट चलता है ना, रथ कितना फास्ट चला गया होगा, क्योंकि पता है कि ये उठेंगे तो फिर वापस रोकेंगे, तो रथ तो अपनी फास्ट तेजी से गया होगा। लेकिन आप गोपियों का प्रेम देखिए, गोपियां कितनी देर के बाद में होश में आई, फिर भी उन्होंने भाग कर रथ को सी पल्सों में पकड़ा। कितना प्रेम होगा उनका, हवा की गति से भागी वो, और रथ की गति को पार करके रथ के आगे जाकर फिर लेट गई। फिर दोबारा संभाषण हुआ, फिर उन्होंने उनको समझाया है, उनको बनाया है, बोले मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं आपका ही हूं, आ जाऊंगा। ये सब यहां पर हुआ है। और वहां पर अभी एक और वज्राघात हो गया कि हम नहीं आएंगे, मतलब बताया नहीं उनको मैंने आएंगे, वो सुना उन्होंने कि अभी यही रहेंगे, मतलब उनके हृदय जो है ना हजारों टुकड़े में बिखर गए। लेकिन क्या करें, उनका जीवन तो उनके संतुष्टि के लिए है, ऐसा नहीं कि अरे कन्हैया ऐसा कैसे करते हो, मैंने तो वादा किया था चलो हमारे साथ, ये गलत बात है तुम्हारी, ये संस्कार है तुम्हारे, एक वादा करते हो करते कुछ और हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बताया। उनका जीवन केवल कान्हा के संतुष्टि के लिए था, जो उसकी मर्जी, जो उसकी खुशी, उसमें हमारी खुशी। हमारे लिए बड़ी दर्दनाक घटना है ये, लेकिन फिर भी हमारे लिए वही खुशी है जो कान्हा की खुशी है। कुमार रहना है तो दाय विल बी डन। कुशल बिहारी में कैसा था, इतना बड़ा मंदिर बनाया, बाद में ठाकुर जी ने राधा रानी ने बताया कि हम नहीं आएंगे वहाँ पर, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हमारे ऊपर सर आँखों पर। तो वो कृष्ण से बिना कुछ बहस वहस करते हुए फिर निकल गए। तो नंद बाबा को पैर नहीं उठ रहे थे उनके, अंडरस्टैंड, चलने के लिए वापसी के लिए उनके पैर ही नहीं चल रहे थे, लेकिन बहुत प्रयास पूर्वक उन्होंने अपने आप के पैरों को चलाया और वो अपने नंदगांव के रास्ते पर फिर चल पड़े। इतने भावना से, इतने गदगद हो गए थे वो, इतने दुखी थे, इतने रो रहे थे, उनको खुद का दुख तो था ही, लेकिन अधिक दुख यशोदा का था कि मैं उसको छोड़कर आया और साथ में आया मथुरा में, और मेरा ये क्या कहते हैं उसको, ड्यूटी था कि कृष्ण बलराम को दोनों को साथ में लेकर आए, है ना, जाते वक्त तो साथ में गए थे, आते वक्त कैसे अकेले आया, ये भी एक जिम्मेदारी है ना कि भाई घर में मैया है, उसको क्या जवाब दूंगा, पता नहीं उसके क्या अवस्था होगी सुनकर। तो वो बीच में गांव में रुक गए क्योंकि उनको आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा था, रुक गए। फिर इनके भाव तो अलग है, तो बहुत दुखी हैं, लेकिन वो गांव के लोग बहुत खुश हैं, राजा हमारे घर पे आ गया, हमारे गांव का राजा, उसका सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, देखो अभी समझो मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे आप हार पहना रहे हैं और मिठाइयाँ खिला रहे हैं और मेरे गीत गा रहे हैं, तो मैं सब सुन रहा हूँ लेकिन मैं मन में इतना दुखी हूँ, वो जनता नहीं जानती है। तो वैसे ये राजा के सिंहासन पर उनको बिठाया, उनका सत्कार किया, उनको वस्त्र दिया, भेंट दिया, मिठाई दिया, पुष्प का वर्षाव दिया, मालाएं पहनाई, गौरव गाया, गीत गाया, संगीत सब चल रहा है उनके सत्कार में, ये राजा हमारे पास आए, कितनी खुशी की बात है, हमारे प्रिय राजा आ गए। लेकिन राजा बहुत दुखी है, उसका हृदय कई टुकड़ों में टूट गया है, वो बालक के विरह में रो रहा है हृदय से, लेकिन वो रो नहीं रहा है बाहर से, अंदर से रो रहा है, टूटा हुआ है। तो उस नाम का, गांव का नाम ही पड़ा गौरव, वो नाम गांव का नहीं गौरव, वो मथुरा से नंदगांव के रास्ते पर है। फिर आगे निकले, फिर रुके, फिर आगे निकले, फिर कैसे फाइनली पहुंच गए, बड़े भारी हृदय से, बड़े दुखी आए। तो यशोदा मैं इतनी खुश हो गई कि आए, अभी इसके पीछे आए, आते होंगे, मतलब अभी तो कोई दिन के बाद आए तो मतलब रास्ते में खेलते खेलते मित्र मिले होंगे, वहां खेलते खेलते देर हो गई होगी, ये पहले आ गए होंगे, अरे आते ही होंगे, तो वो मक्खन बना रही है, तैयारी कर रही है, फूलों की माला, ये रथ, दीपक और मिठाई, संदेश, मक्खन, सब तैयारी में, अभी आ गए कृष्ण बलराम। हाउ एंग्शियस ही वॉज टू रिसीव देम। ये आ गए, बड़े गंभीर थे, बात नहीं कर रहे हैं, और वो तो शी इज बबलिंग विथ हैप्पीनेस, अरे आ गए आप, अच्छा कैसे हुआ वहां पर, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत देर बाद, अरे तुम कुछ बोल क्यों रहे हो, कुछ तो बताओ, अब तो गए थे वहां पर, बताओ कुछ, तो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे कहाँ है वो, मक्खन तैयार है, बुलाओ उनको। फिर देख रहे ऐसे ऐसे आते होंगे, मतलब उसको पता है कि वो बच्चा है, वो खेलता खेलते आता होगा। फिर कहते हैं यशोदा वो नहीं आए हैं, जोर से हंसती है वो, अच्छा मजा कर लेते हो तुम भी तो, बड़े अच्छे मजा कर लेते हो। तो फिर शांत हो जाते हैं, फिर आंखों से आंसू आते हैं, अरे बताओ कहां पर है वो, यशोदा मैंने कहा ना वो नहीं आए हैं, क्या कह रहे हो आप, ऐसा बुरा मजाक मेरे साथ मत किया करो, नहीं यशोदा वो नहीं आए हैं, मैया के चरणों में लोटपोट हो गए और कहे मैं यही रहेंगे। तो फिर वो गंभीर हो गई, बोले कैसे आपने उनको वहां पर रहने दिया, आपका ड्यूटी था उनको लाने का, क्यों आपने उनको नहीं मनाया, क्यों मेरी याद नहीं दिलाई, क्यों ब्रज की याद नहीं दिलाई, क्यों वादे की याद नहीं दिलाई, आप गए थे इतने साथ में, इतने बड़े बुजुर्ग, आप उनको लाना चाहिए था आपको, अब कैसे आप आए लौट के, आ कैसे पाए आप, हाउ डिड यू कम, हाउ कुड यू कम, कैसे आप सफल रहे आने में। ऐसे उसका जो है ना बातों का जो टोन है ना वो भी और सख्त होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और ये शांत बैठे हुए जैसे जो आपको, मैं आपको चिल्ला रहा हूँ और आप ये शांत बैठे हैं बिल्कुल, तो मुझे लगेगा ना अरे कुछ तो बोलो, मैं इतनी बोल रही हूँ आप कुछ नहीं बोल रहे, बोलो आप क्या, ऐसा क्यों किया आपने, तो भी आप शांत बैठे, और जोर से बोलेगी, फिर और जोर से बोले, तो बेचारे रोते जा रहे हैं और ये उसको बोलते जा रही है, बहुत कुछ बुरा भला उसने बोला एक पत्नी होने के नाते भी, लेकिन भाव इतना उसका गहरा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई, बहुत मतलब ब्रज की भाषा में गाली भी दी उनको, आप कैसे पति हो। वो कहते हैं अरे आपसे दशरथ बड़े अच्छे थे, मर गए वो राम की याद में, रह नहीं पाए, खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, सो नहीं पाए वो, जब से राम प्रभु चले गए, और एक दिन मर गए वो, अरे आपसे वो कई गुना बड़े हैं, अच्छे हैं, वो आपसे कितने भले हैं। बाद में बोलती है अरे आपको तो मर जाना चाहिए था वहीं, कैसे आए आप यहां पर इस शरीर को लेकर, अब ये तो फाइनल आघात हो गया ना, दिस इज अल्टीमेट। लेकिन नंद बाबा का जो व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटी, सोचो उसके बारे में आप, नंद बाबा का क्या व्यक्तित्व है, नंद बाबा को स्वयं भी दुख है, ये मत समझना कि नंद बाबा को यशोदा से कम दुख था, लेकिन संत कैसा होता है ना, वो अपने दुख को संभालते हुए दूसरों के दुख के बारे में अधिक सोचता है, समझो आप सबको एक ही दुख हो गया, सब सब किसी का एक घटना हो गई, सब लोग इक्वल दुखी हो गए, उसमें संत वो होता है, वो अपने को भी वो दुख हो रहा है फिर भी वो दूसरों के दुखों को सांत्वना करते हुए उनको संभालता है, समझो कोई जहाज समझो डूब रहा है, तो संत वो होता है वो पहले सबको पार कराता है, वो भी खुद डूब रहा है, ऐसा नहीं कि वो डूबने रहा है, वो भी आप जैसा ही डूब रहा है, आपका जैसा ही दुखी है, उसके भी संकट वही है जैसा आपको है, लेकिन उनमें से संत वो व्यक्ति है जो खुद को बचाने के लिए पहला प्रयास नहीं करता है, सब सब लोगों को पहले भेजता है, शायद खुद मर जाता है या खुद को लाश बचाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सबकी छाती पर पांव रखे पहले अपने आप को रिहा करूंगा फिर आपको लेऊंगा वहां पर, ऐसा नहीं होता है। तो नंद बाबा को भी एक तस्व भर मतलब छोटा सा भी दुख कम नहीं है जितना नंद यशोदा माई को हो रहा है, जितना यशोदा माई बोल रही है उतना इनको भी बोलना चाहिए था कृष्ण को कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, फिर भी ये सारा जो इंसल्टिंग शब्द हैं उसके शांति से सुन रहे हैं। क्या गुण है ये भक्त का कि वो एम्पैथिक है, मतलब वो दूसरों की स्थिति को समझ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोल रही है, इसकी स्थिति ही ऐसी है। अगर कोई समझो साइकेट्रिक पेशेंट है और वो डॉक्टर के पास जाता है और ऐश है बक देता है किधर, डॉक्टर गुस्सा नहीं करते उसके ऊपर, वो जानते हैं बीमार है, पेशेंट है, उस पर क्या गुस्सा करे, वो मन से त्रस्त है, मन से परेशान है, मन से रोगी है वो, थोड़ी हम लोग उसको गाली देंगे, डंडा मारेंगे, वो तो बीमार होकर तुम्हारे पास में, उसका इलाज करना मेरा काम है। तो वो अपना उसकी गाली सुनकर भी उसका प्रेम से इलाज करता है। सी हाउ अ बिग क्वालिटी साइकेट्रिस्ट मस्ट हैव। ये तो परम मनोविज्ञान के तज्ञ है ये, यशोदा की स्थिति को, क्योंकि यशोदा का जितना प्रेम है उसको वो जानते हैं, इसलिए वो उसकी उद्विग्नता को भी समझ सकते हैं कि कितना दर्द उसको होता होगा। यशोदा ऐसा बोलकर बेहोश हो गई, क्योंकि उसको भी पता था कि मैं अपने पति को ऐसे बकते जा रही हूँ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको बोला, रुकने को भी नहीं हो रहा है अपने आप को। और बाद में जब बोला कि दशरथ से आप गए गुजरे हो, दशरथ आपसे श्रेष्ठ है, अरे आपसे बड़े वो बाबा वही थे, बाद में जब लास्ट में बोला कि आपको तो मर जाना चाहिए था, तो खुद भी बेहोश हो गई। फिर भी नंद महाराज ने जाके उनको संवारा, गोद में लिया, होश में लाया, थोड़ी थोड़ी संभली वो, और जब राइट कंडीशन देखा तो नंद बाबा ने बोलना शुरू किया। अभी आप ध्यान से सुनिए नंद बाबा क्या बोलते हैं। नंद बाबा बोलते हैं, ये देखो यशोदा, ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग उग्रसेन को रिहा किए, नंद वसुदेव देवकी को रिहा किए, और सब लोग वहीं थे, उनका वार्तालाप हो रहा था, और वसुदेव देवकी को कान्हा ने पूछा कि अभी क्या सेवा करें आपकी, तो उन्होंने कहा ये रह जाओ, और हमारे श्याम सुंदर उनके चरणों में गिर गए। तो हम समझ गए कि ये नहीं आना चाहते, उनको वही रहना है, अपने माता पिता का कर्तव्य पूरा करना है। तो मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे यशोदा, मरना तो बड़ा आसान था, हम तो चाहते तो वही मर जाते, जीना किसको है उसके बिना, किसको जीना है उसके बिना, कौन चाहता है कि उसके बिना यहाँ ब्रज में रहे। ये ब्रज को मतलब ही क्या है, अगर श्याम सुंदर नहीं है, बलराम जी नहीं है, तो ब्रज को, ब्रज में क्या है उसके बिना। हाँ, जैसे वो अयोध्या वासियों ने कहा था कि अगर राम आप वनवास जा रहे हो तो अयोध्या में है क्या, किसके लिए रहे अयोध्या में, नरक नगरी हो गई, ऊपर से कहके ही रहेगी वहां पर, हमको नहीं रहना है वहां पर, आप जहां रहेंगे वही अयोध्या होगी, वो चाहे जंगल हो चाहे शमशान हो, हम जाएंगे आपके साथ। बड़े बड़े बच्चे बालक सब चल गए उसके पीछे, वो मना कर रहे हैं फिर भी चल रहे हैं, नहीं, जहां पर आपके चरण है वही अयोध्या है। वैसे ही नंद बाबा कह रहे हैं कि इनके यहाँ, इनके बिना ब्रज में क्या है, कुछ नहीं है ब्रज, उनके बिना क्या है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है ब्रज में। तो मेरे लिए भी बड़ा ही आसान था, अगर मैं चाहता कि वहीं कहीं गुजर जाऊं तो आके मुझे ये ब्रज कृष्ण के बिना, बलदाव जी के बिना देखने को ही ना मिले, कोई जरूरत ही नहीं मुझे। लेकिन यशोदा, मरना आसान था लेकिन जीना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि उसने कहा था कि वो आएगा, उसने कहा था कि वो आएगा, सबको बताया उसने वो आएगा, मुझे विश्वास है कि वो आएगा। और जरा सोचो, अगर वो आता है यहाँ पर और देखता है कि मैया बाबा गुजर गए हैं, तो उस पर क्या बीतेगी यशोदा, सोचो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी, अगर वो यहाँ पर आएगा किसी दिन प्रेम से और देखेगा मैया भी गुजर गई है, पापा भी गुजर गए हैं और दोस्त भी गुजर गए हैं, तो उस पर क्या बीतेगी। उसके लिए जीना है यशोदा, जीना पड़ेगा, मरना तो आसान है तुम्हारे लिए मेरे लिए, लेकिन जीना होगा उसके लिए। इसलिए मैं इस गिरती हुई शरीर को, देह को उठाते हुए यहाँ तक आया हूँ, और तब तक जीऊँगा जब तक वो आएगा, चाहे हम पर पहाड़ बीते, पहाड़ आंधी टूटे हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम जीवित रहेंगे उसके लिए। ये नंद बाबा का प्रेम है, ये यशोदा का प्रेम है, हायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस। तो ये भाव है नंदगांव का, इसको हम क्या पकड़ सकते हैं, हम लोग को क्या है उसमें, क्या हमारी योग्यता है। तो ऐसे भाव वाले नंद यशोदा को अभी वो मिल रहे हैं उद्धव जी, समझ में आया ये प्रसंग कहाँ से कहाँ आया। और वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन प्रयत्नपूर्वक जीवित रह रहे हैं, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, टू बी अलाइव, टू सम डे रिसीव कृष्णा। और दो दिन के बाद लौट के आए क्या वो, 112 साल के बाद लौट के आए वो, कोई स्मॉल समय नहीं होता है वो। दो चार दिन आप रहेंगे खाने पीने के बिना भी रह सकते हैं, अरे एक हफ्ता भी रह सकते हैं, अरे एक महीना भी रह सकते हैं, अरे एक साल, 100 साल। राधा रानी को शंखचूड़ ने, सॉरी सीता माँ ने वहाँ पर श्राप दिया था गोलोक में कि तुम पृथ्वी पर जाओगी, मां जन्म लोगी, अपने प्रियतम से 100 साल का विरह होगा तुम्हारा। तो राधा रानी को नहीं, वो सबको विरह हो गया, नंद बाबा को भी हो गया, यशोदा को भी हो गया, बाल बाल को, गैया को, मोर को, सबको हो गया वो। तो वो अनुभव कर रहे हैं उनके प्रेम का, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते उस जो अनुभूति हो रही, लेकिन समझ रहे हैं कि क्या प्रेम है उनका। उनको खत दिया बड़े दर्द से, वो चले आए वो, फिर ग्वालों बालों को देखा, उनकी अवस्था को देखा, फिर गैयाओं को देखा, फिर पक्षियों को देखा, फिर वृक्षों को देखा। वृक्ष तो ऐसे ही मतलब खाली खड़े हैं, बस पत्ते नहीं, फूल नहीं, कुछ नहीं उसके ऊपर, सब सुनसान एकदम। क्योंकि जो भाव यशोदा नंद बाबा का था वो तो वात्सल्य में तीव्र भाव था, लेकिन उसी प्रकार का भाव सब ब्रजवासियों को था। छोटे मोटे स्तर पर जो है ना, अपने अपने रस के अनुसार, साख्य रस के अनुसार, शांत रस के अनुसार, सख्य वो दास्य रस के अनुसार, जो भी सब भक्त हैं उनकी अपनी अपनी यही अवस्था थी। सब लोग तो मरणासन नहीं हो गए थे, एकदम अभी मरेंगे ऐसे ही थी अवस्था, लेकिन सब लोग जी रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अरे गोपियों की क्या अवस्था थी पता है? गोपियों की ऐसी अवस्था थी कि वो, उनने कहा था ना परसों आएंगे, बेचारी इतनी भोली है, वो श्रद्धा रखती इस बात पर कि जाते वक्त श्याम सुंदर ने कहा था कि आएंगे वो। चलो लेट हो गया होगा, बहुत सारे काम करने होंगे वहां पर, क्या क्या राक्षस वगैरह आते रहते हैं उधर, पता नहीं काम बढ़ गया होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो वो रोज सुबह उठकर, वैसे ही उठकर सारी तैयारियां करते थे कि शाम को मिलना है। वृंदा देवी वैसे योजना बनाती थी, सारी गोपियां वैसे ही तैयारी करती थी। श्याम सुंदर तैयार होने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन राधा रानी को तैयार किया जा रहा है, वो खुद भी सज रही हैं, कुंज की तैयारी हो रही है, भोजन की तैयारी हो रही है, कौन से राग में गाने वाले हैं, कौन से गीत गाने वाले हैं, कौन सा भोजन करेंगे, कौन सा रंग का वातावरण वहां पर होगा, कौन सी सीजन में कहां पर तय करना है, ये सब कुछ वैसे के वैसे ही हो रहा है। शाम तक सब तैयारी हो रही है, क्योंकि शाम की इनकी लीला आरंभ होती है, और शाम के बाद में फिर ये वेट कर रहे हैं, पूरी तैयारी हुई है और वेट कर रहे हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। फिर बीच रात होती है, तभी तक नहीं आती है। फिर बीच रात के बाद में ये सब माला वाला तोड़ती है, जो हमारा श्रृंगार जो पहना है वो सब तोड़ती है, सब प्रसाद जो बनाया उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इधर उधर चकनाचूर कर देती है, विरोग वियोग के कारण, और पूरा ध्वंस कर देती, जितना भी उन्होंने तैयारी किया सब नष्ट करके, छातियां पीट पीट कर बीच रात से सवेरे तक रोती रहती है। और सवेरे जब उठती है दोबारा उठकर घर में भागती है, और फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं कि आ जाएंगे, कल नहीं आए, आ जाएंगे। कैन यू इमेजिन, हर रोज 112 साल तक उन्होंने ये किया, एवरी डे आ जाएंगे। शबरी ने कैसा किया था? जब से 5 साल की थी तब उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन प्रभु का आपका दर्शन होगा, ये प्रभु यहीं आके आपको दर्शन देंगे। वो इतनी भाव विभोर हो गई कि गुरु जी को पूछना भूल गए कि कभी आएंगे, वेन। लेकिन वेन प्रश्न जब मन में आया तब गुरु जी जा चुके थे क्षितिज की ओर, ही हैड गॉन। तो शी नेवर न्यू कि वो कल आएंगे, परसों आएंगे, एक महीना बाद आएंगे, एक साल बाद आएंगे, कि 25 साल बाद आएंगे। शी डिडंट नो, एवरी डे शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लॉर्ड राम टू कम। 5 साल की बालिका की उम्र 85 साल हो गई, वो युवा अवस्था में आई, मध्य अवस्था में आई, बूढ़ी अवस्था में, अतिवृद्ध अवस्था में आई, अति अति वृद्ध अवस्था में आई, आंखों से अंधी हो गई, कानों से बहरी हो गई, कमर से झुक गई, फिर भी रोज वो रास्ता जो उसकी झोपड़ी की ओर जाता है उस रास्ते को वो फूलों से सजा कर रखती थी, रोज बेर तोड़ कर रखती थी कि इसमें मीठे कुंवर कौन सा। ऐसा नहीं कि उसने उसी दिन बेर तोड़े, उसी दिन चक्के देखे, रोज के स्तर पर वो बेर तोड़कर चक्कर मीठे बेर को अलग रख के तैयार रखती थी कि आ जाएंगे तो खिलाऊंगे। केवल जिस दिन आए उस दिन वो बेर ठाकुर जी ने खाए, लेकिन 80 साल तक तो वो रोज करती रही उस चीज को। कितना पेशेंस है देखो, हम तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे बहुत हो गया अभी, क्या है रोज का नाटक है ये, क्या है, कुछ जीवन में खुशी नहीं, खाना पीना कुछ है ही नहीं, सब कुछ हराम हो गया पूरा, नहीं आना तो मत आओ, भूल जाएंगे आपको, ऐसी अवस्था है उनकी। और उनको लग रहा है कि आएंगे आएंगे, और रोज तैयारी कर रहे, छाती छाती पीट कर रो रहे हैं, उतने में कोई आता है जो उनके जैसा ही दिखता है। क्या अवस्था होगी उनकी देखकर, और पता चलता कि वो नहीं है, फिर क्या अवस्था होगी होगी सोचो। फिर गया बाबा के पास, पता नहीं क्या बोल रहा है, फिर आता है उनको मिलता है। तो गोपियां जो ना, उनको बड़ा संकोच था, गाँव की लड़कियां थी वो, बहुत प्रेमी लड़कियां थी, उनको वो जिस तरह से बाबा ग्वाल बाल उनको ओपनली बोल रहे हैं रस्ते में या कहीं भी वन में, वैसे वो खुले में उनको बोल नहीं सकते उनके हृदय का भाव क्या है। तो वो कहता है कि हमने खत लाया आपके लिए, तो वो खत भी उनको ऐसे एकांत में जाकर लेना चाहती है। तो सारी गोपियां जो है ना, उस सारी गोपियां उनको इस वन में एकांत में लेके आती है, एकदम घना जंगल, वहां पर कोई नहीं है, खाली गोपियां हैं, राधा रानी है, अष्ट सखियां हैं, और सिंहासन पे उनको बिठाती है, क्योंकि राजा था ना, वो राजा का तरफ से आया था, सिंहासन में बिठाकर सब बैठती हैं जमीन पर, और फिर उनका संवाद शुरू होता है। क्या बताएं, मैं क्या वर्णन करूं उस संवाद का, ऐसा उत्कट संवाद, मतलब बीच में शुरू में रोने लगे, वो खत दिया उन्होंने, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या बोलेंगे, इनकी अवस्था देखकर क्या योग सिखाएंगे इनको, क्या प्रवचन पढ़ाएंगे, हाँ वो तो पूरा उधर ही उनका क्लीन बोल्ड हो गए थे, वो जब आए देखा तो सब उनका प्लानिंग फेल हो गया इधर, क्या कौन सा दवाई दूँ उनको, सारी दवाइयों का प्लान तो यहाँ फेल है। और एक एक देख रहे हैं, पहले गायों को देखते हैं, फिर उसके ऊपर वालों को देखते हैं, पहले सांतरस को देखते हैं, फिर दास्य को देखते हैं, फिर साख्य वालों को देखते हैं, सखाओं को, फिर मैया को मिलते हैं, और ये तो उसका एपिटोम है ना, शिरोमणि माधुरिया, वहाँ पर आते हैं, तो उनका तो मतलब वो हतबल हो गए पूरे इनको देख कर ही, क्या कहेंगे, सारी दवाइयाँ बेकार हैं इनके सामने, कोई दवा चलने वाली नहीं इनके ऊपर, खाली सुनना ही काम है बस, हृदय में बड़ा सुपरा मेजर ऑपरेशन हो रहा है उनका खुद का, अंदर में क्या हो रहा है उनको ही पता है, उनके अंदर क्या बीत रही है। बिठाया उनको, अभी जब बिठाते किसको तो वो बोलता है ना, बाकी सुनते हैं यहाँ पर बाकी सब बोल रहे हैं और वो बिठाया वो सुन रहे हैं पहले प्रेम का प्रकट किया, प्रेम दिखाया, कैसे रो, कहाँ है, किधर है, क्या कर रहे हैं, फिर गाली देना आरम्भ किया, उसको हमने घनघोर गाली दिया, अरे वो निर्मोही, उसको कहना कि हम उसको भूल जाना चाहते हैं, कमबख्त ये प्रेम ही ऐसा है कि उसको भूल भी नहीं पाते हैं। बाय द वे, जब वो आ रहे थे रथ से, तो उन्होंने जमुना किनारे गोपियों को देखा कि वो ध्यानस्थ बैठी हुई है। वे आपको अगर मैंने देखा कि आप ध्यान में बैठे हैं, तो मैं क्या समझूंगा, भाई अक्षोभ्य कृष्ण प्रभु भगवान को ध्यान करने का कोशिश कर रहे हैं, हृदय में पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं उनको, जो मन यहाँ वहाँ भटकता है उसको मन को एकाग्र करके ठाकुर जी के में विराज करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं समझूंगा ना। आपको देखा सबको समझूंगा, ये सब लोग तो भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं विष्णु पर, ध्यान केवल विष्णु पर होता है, उसको हृदय में बसाने के लिए होता है। तो ये पूछते हैं, अरे उनको लगा कि अरे मैं तो योग सिखाने आया, तो ये ऑलरेडी योग कर रही है, तो क्या कहती है, अरे उद्धव जी हम तो वो योग कर रहे हैं जो बसे हुए टेढ़े कृष्ण को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा योग तो मैंने कभी सीखा नहीं, मेरे गुरुजी ने ऐसा योग नहीं सिखाया, मेरे गुरुजी ने वो योग सिखाया जो भूले हुए कृष्ण उसको याद करने के लिए और बिठाने के लिए और स्थापित करने के लिए हमने योग सीखा था। ये तो बड़ा अजीब योग है, इसको मुझे नॉलेज नहीं, बोले क्या है ये, अरे बोलते हैं वो पहले तो हृदय खाली था हमारा, इसमें आया कि आके बस गए, लेकिन ये ऐसे हैं टेढ़े हैं बिल्कुल, हमारा तो हृदय बहुत सरल था, सीधा सा था, लेकिन ये टेढ़े प्रेमी को बसाने के लिए हमने हृदय को भी टेढ़ा कर लिया, सेटल कर लिया उसको कि भाई ये बसे उसके अंदर, और अभी ये चला गया है निर्मोही, अभी उसको निकालना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा टेढ़ा अंदर फंस गया है कि निकलता भी नहीं, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, योग कर रहे हैं कि इसको निकाले यहाँ से और भूल जाए इसको, लेकिन कमबख्त भूलते भी नहीं उसको हम लोग। तो उधर ही वो दंग हो गया था कि ये क्या चीज़ है, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तो वो कह रहे हैं कि हमने तो बेकार भी दिल लगाया इसके ऊपर, वो तो कई रानियों के साथ में वहाँ डोल रहा है। अच्छा, बीच में ऐसा बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, अरे माफ़ करना उद्धव जी, हमने तो कितना बुरा भला कहा, हम तो हमारी तो जान का टुकड़ा है वो, अरे उद्धव जी प्लीज़ माफ़ करना हमको, हम तो बड़े बुरे भक्त हैं, हम तो कोई प्रेम नहीं करते, हम तो अगर प्रेम होता तो बोलते कैसे हम, बाद में बोलते हैं अरे हम तो समझते थे कि हमको उनको बहुत प्रेम है हमारा उन पर, लेकिन हमको भी यकीन आ रहा है कि हमको उन पर कुछ प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर हमारा उन पर प्रेम होता तो हम आज जीवित नहीं रहते, अगर सही में हमारा प्रेम उन पर होता तो हम सब लोग मरे होते आज, संतो जिंदा है, घूम रहे हैं पृथ्वी पर इस मुर्दा शरीर को लेकर, इसका मतलब हमें कोई प्रेम नहीं है, ऐसा भी बोल रहे हैं, वैसा भी बोल रहे हैं, फूट फूट कर रो भी रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं, फिर होश में आ रहे हैं, फिर कुछ पक रहे हैं, कोई गाली दे रही है, कोई प्रेम से बोल रही है, कोई रो रही है, कोई उल्टा सीधा बोल रही है, कुछ ऐसा एकदम अजीब सा वातावरण था पूरा। और उस पर शिरोमणि राधा रानी वो तो बम्बल भी से बात कर रही है, भंवरे से बात करके, कभी भंवरे को गाली दे रही है, कभी भंवरे को प्रेम दे रही है, कभी प्रेम से बात कर रही है, कभी मिलने को बोल रही है, कभी कुछ कुछ बोल रही है, उसको समझना उद्धव जी तो परे पागल हो गए बिल्कुल, ये क्या चीज़ है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसका इलाज क्या है, आई डोंट नो। और यहां पर बहुत लंबा हृदय द्रावक संवाद हो गया यहां पर। तो उद्धव जी खाली मन में एक गणित करते जा रहे हैं बस, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेशंस, अभी ये, उसके बाद में वो, उसके बाद में वो, अब ये वाला जो है वो पहले वाले से स्ट्रांग है रियलाइजेशन, उसके बाद में द हाईएस्ट, उसके बाद में हाईएस्ट, उसके बाद लास्ट कर उनका साक्षात्कार क्या है, अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा भक्त हूँ, बड़ा श्रेष्ठ भक्त हूँ, भगवान के साथ रहता हूँ, सबसे ऊँची पद में हूँ मैं, भक्ति में बड़ा ज्ञानी हूँ, हाँ सब सारे से निपुण हूँ मैं, लेकिन समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनके सामने तुरंत का पत्ता भी नहीं हूँ, कोई इनसिग्निफिकेंट क्रीचर हूँ मैं, पहले समझ में आया उनको। तो ये जगह हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जरूर आना चाहिए, यहाँ पर ज्ञान का घमंड नष्ट होता है, द प्राइड ऑफ नॉलेज इज डिस्ट्रॉयड हियर। इसलिए एक बार ब्रह्मचारियों की यात्रा चल रही थी, ब्रह्मचारी तो शास्त्र का अध्ययन करते ना, बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं और उसमें विश्लेषण करते रहते हैं, उसका एनालिसिस और कथा में बताते रहते हैं। तो एक बार यहाँ से यात्रा में जा रहे थे तो ये जगह को स्किप करके जा रहे थे, मतलब मुमकिन नहीं, बाद में जाएंगे शायद उधर जाएंगे वगैरह। तो गुरुजी ने कहा यू मस्ट गो टू उद्धव क्यारी, क्योंकि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान का घमंड भी होता है और यहाँ पर आकर ज्ञान का घमंड टूट जाता है। तो जरूर यहाँ पर जिनको जिनको लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान है उनको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो है बड़ी कृपा से आपका ज्ञान का घमंड जो है मिटा देती है। तो उद्धव जी इतने बड़े पंडित थे, वो एकदम कीटक की तरह महसूस करने लगे अपने आप को इनके सामने। ये तो गवार औरतें हैं, कोई श्लोक नहीं बोल रही हैं, कोई पंडित्य का प्रकट नहीं कर रही हैं, उधर ऐसे ही बस दिल की बातें बोल रहे हैं, इसमें कोई फिलोसफी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन इतनी गहरी बातें बोल रही हैं उद्धव जी, दंग होते जा रहे हैं। अरे क्या प्रेम है मुझे भगवान के लिए, मैं तो इतना पास में हूँ, इतना समझता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, ये प्रेम तो बिल्कुल कण के समान भी नहीं है, तो सागर के समान एक एक औरत यहाँ की, और इतनी दूर है उनसे, ये उनके पास में भी नहीं है, लेकिन इनके इतने निकट हैं वो, इनके कण कण में बसे हैं, इनके हृदय के हर एक स्पंदन में बसे हुए हैं, उनके हर सांस में बसे हुए हैं, हर रोम रोम में बसे हुए हैं उनके, कोई इनका अंग ऐसा कण रूप में भी नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं है, कहीं से भी देख लो, कहीं सुन लो, कहीं से भी सुन लो, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है इनके अस्तित्व में, इनकी भावना में, इनके विचार में, इनकी बुद्धि में, हर जगह कृष्ण है। मैं सोचता हूँ मैं कृष्ण के पास में हूँ, तो शरीर से पास में हूँ, आत्मा से तो ये एक रूप है उनसे, क्योंकि जब कृष्ण यहाँ से गए तो उसी समय जैसे उन्होंने पहला अपना कदम ब्रज के बाहर रखा, तो वो जो कृष्ण थे वो अलग कृष्ण थे, वो तो मथुरा कृष्ण थे, ब्रज कृष्ण तो यही रह गए, लेकिन वो लुप्त होके सभी गोपियों के हृदय में बस गए भाव रूप में। और जो संग भगवान ने यहां से जाने के बाद भाव रूप में गोपियों को दिया वो तो करोड़ों गुना अधिक उत्कट था जितना उन्होंने शरीर रूप से यहां दिया था। तो भगवान क्रूर नहीं है, जब उन्होंने देखा कि साथ वाले संग में जब गोपियां पराकोटि में पहुंच गई थी, संग वाले भक्ति में या प्रेम में जो साथ में रहकर, साथ में रहकर होता है उसको क्या कहते हैं, संभोगा एंड विप्रलंबा, संभोगा यानी साथ में रहकर आनंद लेना, विप्रलंबा मानी दूर जाके। तो ये संभोगा विधि में जब वो पराकोटि में पहुंच गई थी तब कृष्ण ने सोचा कि अभी उनको विप्रलंब का आनंद देना चाहिए, अगली सीढ़ी का आनंद जो है वो देना चाहिए, इसलिए भगवान यथा योगित समय पर मथुरा चले गए। तो साथ में रहने का आनंद 10 साल दिया उनको, लेकिन जो उच्च कोटि का आनंद था 112 साल तक दिया। और ऐसा नहीं कि वहां पर बड़े खुश थे, वो रोज रात को उठते थे, सब अपनी रानियों के घर में सो रहे हैं, 16,108 रूप में वहां पर शयन कर रहे हैं, बीच में उठते थे ऐसे बिस्तर पे, रोते थे, पुकारते थे, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, धनिष्ठा, चंद्रानना, किधर हो आप, नंदमुखी किधर हो। तो रहने बोलते थे क्या हो गया आपको, व्हाई आर यू क्राइंग, क्या परेशानी है आपको। तो बोले कुछ नहीं, फिर सो जाते थे। भोजन में बैठे हुए हैं, भोजन खा रहे 56 भोग, अचानक ऐसे ही हाथ में भोजन है, रुक्मिणी हवा दे रही है, ये कहीं खो गए। तो स्वामी क्या हो गया आपको, ब्रज की याद आ रही, मैया की याद आ रही, गोपियों की याद आ रही। एनीवेज, अभी मुझे एक ऐसा दिल कर रहा है कि और एक आपको उपाख्यान बताऊं उसका। तो वो दिन का हर का ये आका परेशानी है उनका, कभी इधर रात को उठते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ हंसते हैं, क्या पता नहीं, नींद तो उनको है नहीं, दिन में भी ऐसे ही परेशान रहते हैं। क्या हमारे में कुछ कमी है क्या, क्या प्रॉब्लम बताओ, इतनी सारी रानियां हैं, सब आपको संतुष्ट करना चाहती हैं, सब एक दिल से आपकी हैं। नहीं, वो ब्रिज ऐसा है ना, वो क्या करें आपको, तो क्या ऐसी बात क्या है ब्रिज में बताओ, क्या हम भी जरा उसको सीखें, आपको संतुष्ट करें, आपको दुखी देखकर हमको बड़ा दुख होता है। बोले ठीक है, एक दिन कभी बताएंगे आपको ब्रज के गोपियों का, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है। एक दिन दरबार में बैठे थे तो सरदर्द शुरू हुआ उनको, तो आप पता है द्वारकाधीश कृष्ण है वो, उनके लिए तो क्या फटाफट सब भाग के आए, भाई भाई दबा लो, ये करो वो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बहुत देर तक दिन भर दरबार में ही तड़पते रहे, फिर रानियों को पता चला, रानियां भाग के आई, अरे हमारे स्वामी के नाथ को दर्द हो रहा है, क्या करे बताओ, क्या वैद्य को लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, यहाँ के वैद्य को नहीं, उस गांव के वैद्य को लाओ, उसको दूर से लाओ, वो बहुत कुशल है, ऐसा पूरा रिसर्च हुआ, सब लोगों ने कोशिश किया, हम कुछ करें, सब लोग खड़े हैं, रानियां सब खड़ी है उधर, खड़े हैं 16108, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सरदर्द से फटे जा रहे हैं पूरे। नारद मुनि आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, तो फिर नारद मुनि बड़े होशियार हैं, अरे ठाकुर जी हमने तो इतना प्रयास किया, लेकिन हमने आपको तो पूछा नहीं कि आपका सरदर्द कैसे ठीक होगा, शायद आपको पता होगा इसका इलाज, आपने तो चुपचाप ले रहे हमारा इलाज, लेकिन हमने तो आपको पूछा ही नहीं कि आपका सरदर्द का इलाज क्या है, अभी पूछते हैं। तो बोला आपने तो पूछा ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊं, आपने अपनी कोशिश कर रहे हो, बोले ठीक है लगे रहो अब पूछ रहे हो तो बताता हूं। तो फिर वो बोलते हैं कि जो भी अपने आप को मेरा भक्त समझता है, उसके चरण की धूल और चरण धोने के बाद में मिला हुआ पानी वो मुझे मिलेगा, वो मुझे धूल सर पे लाएगी और चरण में पानी पी लूंगा तो मेरा सरदर्द तुरंत मिट जाएगा। अभी सारी रानियां, सारे द्वारकावासी, मंत्रीगण सब भगवान के भक्त हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, द्वारका के हर एक जीव भगवान का भक्त है, और वो आतुर थे सुनने के लिए कि क्या बताएंगे, पहला वो मैं करूंगी, सब लोग सोच रहे हैं कि पहले वो मैं करूंगी या मैं करूंगा, ऐसे सुन रहे हैं आतुरता से कि मैं अभी पहले पकड़ के शब्द में पहला इलाज करूंगी उसका। जैसे ही सुना कि चरणों को धूल देना होगा तो सब लोग पीछे हट गए, कैसे देंगे, तो स्वामी हमारे नाथ हैं, उनके चरणों की धूल हम लगाते हैं मांग में हमारे, तो नरक में जाएंगे हम लोग, क्या हमारी स्थिति होगी, हमारा मर्यादा नहीं है ऐसे पति की, पति को अपने चरणों की धूल देना है, हम तो उनकी धूल लेते हैं, ये हमारा पोजिशन है। अपने बात में सही थी वो, बिल्कुल उनका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट था। तो कृष्ण बोले बता तो दिया मैंने आपको, सब लोग देख रहे हैं इधर उधर, कौन करेगा ये, इतना धाड़स कौन करेगा। तो नारद मुनि को वो देखते हैं, अरे नारद एक काम करो, जरा वो जरा ब्रज में जाके दौंडी लगा दो, वो नगारा पीटो, वहाँ अनाउंसमेंट कर दो, देखो कुछ दवा मिल जाए, ठीक है। तो आ गए ब्रज में द्वारका से, और एक जगह खड़े हो गए और दौंडी लगाया लोगों की सहायता से, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, श्याम सुंदर जी को सरदर्द है, द्वारका में बहुत तकलीफ हो रही है, कई दिन तड़प रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी अपने चरणों की रज, अपने आप को भक्त समझता है और चरणों की रज देगा, तुरंत सरदर्द दूर हो जाएगा। अरे इतनी संख्या में जनता आई, क्या बताएं, सारी गोपियां जो है हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जमा हो गई, ऐसे जाके ले लो खिचड़ खुरच के दे रही हैं, और क्या कर रही हैं, इतना तो दे दिया जितना रज में था, उतना नहीं तो जमुना जी के पास, जमुना जी में गई, वहां पर पांव भिगोया, फिर रज में डुबाया, फिर जो रज लगी उसको उठाया, फिर जमुना जी में गई, फिर गीला किया, फिर रज में डुबाया, फिर गीला किया, फिर निकाला, ये ढेर सारा जमा हो गया, अरे इतना बड़ा कैसे ले जाऊंगा उसको। तो बोलेंगे कि बोलते क्या उनमें, अरे आगे भी काम आएगा रख लो, फिर थोड़ी आओगे, यहाँ पर इतना तकलीफ होगी, आप आओगे जाओगे तब तक तड़पते रहेंगे, वो स्टॉक रख लो, आगे भी कभी दर्द होगा तो यूज करो उसको। अरे वो कहते नारद मुनि, अरे मूर्ख औरतों, तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा, पता है तुम क्या कर रही हो, तो गवार औरतें हो, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ नहीं तुम्हें। बोले हमें कुछ ज्ञान मान की जरूरत नहीं है, फिर भी ये बोले जा रहे हैं क्योंकि ये तो ज्ञानी है ना, बता रहे हैं उनको क्या है इसका आगे क्या होगा। अरे तुम लोग अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक, जब तक काल रहेगा तब तक तुम यहाँ पर नरक में तड़पती रहोगी, दुख भोगती रहोगी, यातना दंड भोगती रहोगी इस पाप के लिए। नारद मुनि भी बड़े अपना अपना बता रहे हैं, जो भी अपना अपना होता ना स्टॉक में, वो लोग बताते रहते हैं। नारद मुनि ने उनका मतलब उनका जो गौरव है ना, वो नारद मुनि ने प्रकट किया। वो तो मुनि सब जानते हैं, वो तो त्रिकालदर्शी सब जानते हैं। हमारे तुम्हारे लिए उनका गौरव प्रकट हो, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न करके उनको ये ज्ञान दिया। तो गोपियाँ क्या कहती है उनको कि अगर हमारे चरणों का रज लगाने के पश्चात अगर उनका सरदर्द पूरा ठीक नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी कम भी होगा ना, तो भी उस कम होने के लिए हम चिरंतन काल तक नरक में यातना भोगने को तैयार है। ऐसा नहीं बोल रहे कि ठीक होगा तो जाएंगे नरक में, जरा सा भी उसमें कमी आ गई ना तो भी हमारा जीवन धन्य है कि हम उनकी सेवा कर पाए। और उसके लिए अरे नरक क्या, कहीं भी भेजो, हम तैयार है उसके लिए, टूटने के लिए तैयार है, हजारों टुकड़े कर दो हमारे, नो प्रॉब्लम, पर उनका दर्द जो है वो कम होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो नारद मुनि जी उतना बड़ा ढेर उठा के अभी बेचारे सहायता लेके आ गए ना द्वारका तक, बोलते तो अरे नारद मुनि जी ये क्या हो गया, तो बोलते ये सब जो वहां से रज लेके आया हूं मैं, इतना क्या करूंगा मैं, इतना लगा के मेरा ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं वो उन्होंने कहा कि आगे भी काम आएगा। तो क्या हुआ, रानियां भी देख रहे अरे क्या हुआ। तो नारद मुनि ने बहुत समझ बूझ कर रानियों के सामने ये सारी कहानी बताई कि उन्होंने कहा है कि हम आपका दर्द ठीक नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए भी कम करने के लिए भी जीवन भर अनंत काल तक नरक में जाने को तैयार है। जब ये वाक्य नारद मुनि सुनाते हैं तो बड़े ही सूचक दृष्टि से कृष्ण अपनी रानियों की ओर देखते हैं, और सब रानियां सर झुकाती हैं, वो समझ जाती हैं कि वो क्या चीज है ब्रज में जो इधर नहीं है, उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल जाता है। इतनी बड़ी लीला करते हूँ अपने ब्रजवासियों का गौरव सुनाने के लिए। तो ये सब भाव देखकर उद्धव जी बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, होता ही करते हैं कि एक ही नतीजा है, अभी मैं बहुत तुच्छ हूँ, कोई मुझे भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या सांत्वना दूंगा उनको, मुझे में क्या शक्ति है इनको समझाने की, ये तो अपने आप में ही जो है वही है, श्रेष्ठ है, मैं क्या करूँगा उनके लिए, लेकिन एक काम जरूर करना चाहूँगा, इनके चरणों की रज देना चाहूँगा मैं। तो उसके लिए उन्होंने, मैं आपको कल सब कथा बताई वहाँ पर, उसके आगे वाली कथा। तो फिर यहाँ से द्वारका गए हैं, वापस लौट के आए हैं, तपस्या किया है उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए। सो उद्धव जी का जो ये प्रसंग है, और यहाँ का खास करके जो वार्तालाप है, आप जरूर भागवत में पढ़िए उसको, मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ उसको आपको बताने के क्या क्या वार्तालाप हुआ, मैं भी समझना चाहूँगा आगे जाकर भविष्य में उद्धव जी की कृपा से, ब्रजभूमि की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आगे समझ में आएगा थोड़ा बहुत कुछ। अरे उद्धव जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा तो हमको क्या समझ में आएगा, उद्धव जी ही नहीं समझ सके उसको, ये क्या है। हमेशा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आप सोचिए उस एग्जाम्पल को। हमारा शरीर जो है ना, उसके अंदर कहते हैं कि 3.5 करोड़ रोम हैं आयुर्वेद के अनुसार, और उसके अलावा देखो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा जिसमें से हेयर निकल रहा है उसके बाजू में और भी एक होल है जिसमें हेयर नहीं निकल रहा है, वो पसीने का ग्रंथि का ओपनिंग है। जब पसीना आता है तो उसमें से बूंद निकलने लगती है। ऐसे शरीर में वो करोड़ों वो भी हैं, रोम अलग हैं और घर्म बिंदु के भी अलग अलग हैं। समझो उस एक पसीने के बूंद में, जब आपको बहुत पसीना आया है, बहुत गर्मी हो रही है, एक बूंद में एक अमीबा बैठा हुआ है समझो, तो अमीबा के लिए तो सागर है। अमीबा तो एक पेशी वाला होता है, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो क्या बोलेगा, मैं तो सागर में हूँ। और कोई आकर बताए उसको अरे बगले तू सागर में नहीं है, तो मनुष्य नाम के शरीर के अनंत करोड़ों घर्म ग्रंथियों से निकलने वाले एक बूंद में हो तो समझेगा क्या उसको, यू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अमीबा है, उसके लिए वही सागर है। और वो कोई व्यक्ति बताएगा अरे उस मनुष्य नाम के शरीर पर ऐसे करोड़ों सागर हैं, इसमें से एक में तू बैठा हुआ है जो तेरे लिए सागर है, और उसमें मनुष्य में केवल पसीने के सागर नहीं है, और भी लिवर भी है, हार्ट भी है, और किडनी भी है उसके अंदर, और दिमाग भी है, और आत्मा भी है, और सब कुछ है उसके अंदर। तो खाली उसके शरीर के एक छिद्र के मुख पर बैठा हुआ है उसको तो सागर समझ रहा है। तो अमीबा कितना भी कोशिश करेगा, कितना भी कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, योगा, सिद्ध योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा करेगा, समझेगा क्या उसको, वो अमीबा हम हैं, ये जो प्रेम का सागर है वो ऐसा है, जो जिस बूंद में अमीबा बैठा है वो भी उसको समझ में नहीं आ रही है कितनी विशाल है वो, और ऐसे करोड़ों बूंदे उस शरीर में हैं, वो करोड़ों सागर को क्या समझेगा वो, और कैसी सबकी यात्रा करेगा, हम तो मंडूक की तरह है ना, हम लोग कुएं में बैठे हुए हैं। और बोल रहा है मेरे कुएं से 4 गुना बड़ा सागर है क्या, 10 गुना बड़ा है क्या, 15 गुना है, क्या बताएं उसको, कितना गुना है क्या बताएंगे उसको, हाउ टू एक्सप्लेन टू हिम। वैसे ही ये इतने बड़े पंडित बृहस्पति के शिष्य आए, उनको समझ में नहीं आया तो हमको क्या समझेगा वो। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, इतना जरूर कर सकते हैं, कितने भी हम तुच्छ रहेंगे लेकिन प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि हमें इस प्रेम की एक बूंद का भी अगर लाभ हो जाए, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, उनकी सेवा करने के लिए। इसके लिए नहीं कि हमारा भी कहीं कोई कथा करेगा आगे जाकर जैसे गोपियों की कथा हो रही है, इसलिए नहीं कि वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति समर्पण का, देयर वाज नो, खुद का कुछ नहीं था उसके अंदर, मैं नहीं था उसके अंदर, किधर भी सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। मुझे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या स्थिति होगी, इसकी कोई परवाह ही नहीं उनको। कृष्ण को क्या होगा, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करे, कहाँ पर है वो, कैसी सेवा करे उनकी, गाली भी दे रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं, मान भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ही कर रहे हैं वो, उसमें भी उनका कुछ स्वार्थ नहीं है। लगता है बहुत बड़ा स्वार्थ है, अरे जरा सा लेट हो गया तो क्या इतना रोने का क्या, जाके उधर मानसरोवर में ऐसा आप बोलेंगे क्या, इतने रोती क्यों हो तुम, हाँ अभी तो मैं आ रहा था ना, थोड़ा क्या गाड़ी पंक्चर हो गई तो लेट हो गया, इतना क्या रोना है, उसमें गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, ऐसा नहीं है वो, ये प्रश्न नहीं है। उनको कैसे रिझाएं, कैसे उनको प्रसन्न देखें, हर हमारे दुख की कीमत पर, हर हमारे कष्ट की कीमत पर हम उनको सुखी रखना चाहते हैं, हमारे इष्ट को। ये समर्पित भाव था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको वंदन किया है, कठोर सन्यासी होने पर भी उनको सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया है। कैसे भक्त बताया है, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनन मर्महताम करोतुवा। हाँ हमें आप हमें कुचल दो, पिनष्टुमाम का मतलब क्या है, यू क्रश मी, आप हमें कुचल दो, बिल्कुल चिंता मत करो, कुचल दो हमें आप, या तो दर्शन न देकर हमें भग्न हृदय कर दो, हृदय को हमारे तोड़ दो दूर जाकर हमारे, या गले लगा दो, पास बुलाओ दूर भगाओ, जो चाहे वो करो, लेकिन हम हर हालत में, कुचले हुए हालत में, हृदय के भंग हुए हालत में, या मिलन के आनंद में, हम आपके ही रहेंगे। मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः, और कोई हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है, केवल आपको आनंद देने का, संतुष्ट करने का, आपका सेवक, तुच्छ सेवक बन के रहने का, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही गोपियों के जीवन का सार है। वो हमको समझ में कैसे आएगा, लोग की क्या प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा याचना कर सकते, जैसे उद्धव ने क्या सोचा, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बस इनके चरणों की धूल मिलेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, हम लोग भी वही कर सकते हैं। यहाँ पर आके गोपियों ने उस श्रेष्ठ भाव को प्रकट किया है, इसलिए इसकी धूल हम ले सकते हैं, सर में लगा सकते हैं, यही वो धूल है जहाँ पर वो बैठी थी, यही वो धूल है जहाँ पर वो चलती थी, यहाँ पर विहार करती थी, यहाँ पर मक्खन बनाती थी, यहाँ पर गीत गाती थी, यहाँ पर माला बनाती थी, यही सब तो किया है उन्होंने यहाँ पर, ये भूमि उसकी साक्षी है, इसका दर्शन ये भावना का इस भूमि ने किया हुआ है, इस रज ने इसका रहस्य जो है अपने आप में समेट लिया है, इस रज के कण में वो रहस्य है, इन गोपियों के प्रेम का और भाव का रहस्य इस रज में है, तो वो हम ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जब उद्धव जी ने इतना उत्कट भाव यहाँ पर प्रकट होते हुए देखा तो उनको लगा ये तो भूमि बहुत पवित्र भूमि है, ये चरम सीमा की पवित्र भूमि है, कोई साधारण भूमि नहीं है ये, यहाँ पर कोई पापी व्यक्ति आएगा तो सही नहीं होगा, इस जगह का पवित्र जो है चरम सीमा का वो नष्ट हो जाएगा। तो उसने यहाँ पर कांटे बोए बबूल के, इसलिए ब्रज में सब जगह कांटे क्यों हैं, क्योंकि जो कांटों का दुख सहते हुए आएगा वही योग्य होगा, वही समझेगा उसको, हमको तो कोई कांटा लगा नहीं अभी, कैसे हमको समझेगा। लेकिन जब हम 1992 में आए थे शायद, बहुत कांटे थे इस समय, बहुत टाइम लगा, 2 घंटे लगे हमको पहुंचने के लिए, इतने कांटे थे, उतना पानी था, दिखता भी नहीं था कि पानी में क्या है, इतना इतना पानी था गहरा, एक कदम रखेंगे तो एक कदम में 4-5 कांटे जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते पता नहीं कितने सैकड़ों कदम चले होंगे हम लोग यहाँ तक। यहाँ पर बहुत समय तक कांटे निकालते रहे गुरु जी के, हमारे सबके, उसके बाद में कथा हुई। तो ये बाबा बता रहे थे कि ये जो है ना पूरा क्षेत्र जो है 84, कितना है बाबा, 84 एकड़ की जमीन है पूरी, वो सब उद्धव क्यारी है। अभी एक दो गोपी तो नहीं थी ना, कितनी गोपी थी, नंबर पता है आपको
जिस समय उद्धव जी यहां बैठे थे
कोटि कोटि अनंत यूथ, एक एक गोपी के अष्ट सखी के तीन सखियां हुआ करती थी, और हर एक जो असिस्टेंट सखी थी मंजरी थी उसके पास 1 करोड़ गोपियों का यूथ हुआ करता था। उस प्रकार से एक अष्ट सखी में से एक सखी के पास में 3 करोड़ तो खुद का ही उसका प्राइवेट सर्कल था। और उसके बाद में फिर गोपियों के कितने वर्ग हैं, किंकरी दासी ऐसे 8 वर्ग हैं उनके, सखी परमेष्ठी सखी, हाँ गोपी, किंकरी का मतलब क्या है, वो बहुत सबसे सबसे नीचे रहती, वो क्या पूछती है, किम कर रहा, क्या करूं, यही प्रश्न है उसका और कोई प्रश्न नहीं, नाम ही किंकरी है उसका। वहां से शुरू होता है इतने प्रकार की, तो करोड़ तो बहुत कम संख्या है महाराज जी, करोड़ में तो क्या होता है, अनंत गोपियां थी, तो वो क्या इतनी जगह बैठ सकते हैं, तो 22 लोग बैठे यहाँ पर अकेले सुनने वाले और बोलने वाले तो कितने करोड़ों। अरे ये बात बताना भूल गया आपको मैं, उसके बाद में यहाँ से भी वो सब चले गए, वो पूरा ब्रज का दर्शन कराया गोपियों ने उनको, वो बताया यहाँ पर ये किया, यहाँ पर वो किया, वहाँ पर वो किया, और जब वो वर्णन कर रही थी खुद कृष्ण के बारे में तब वो बड़ी खुश नजर आ रही थी उस समय, तो उद्धव जी ने एक बड़ा सेवा भी किया उनका।
तो जी को जब गोपियां कहती थी इधर ये लीला हुई थी तो सामने गोपियां साथ में भी हैं और उधर
लीला में भी है, भी हो रही है, दर्शन भी कर रहे हैं वो,
उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं कि गोपियां
देखो
डबल रूप हो गया।
कोई बताने वाले कौन है, बताने वाले पप्पो तोता नहीं है, रटने वाले कथा करने वाले नहीं है, बताने वाले वो अनुभवी लोग हैं, जो अनुभव किया उन्होंने
सभी लीला दिखाई,
हाँ प्रकट करके दिखाया, भगवत जी में वर्णन है उसका, गर्ग संहिता में वर्णन है कि ऐसी अनोखी ब्रज यात्रा थी वो, जिसमें यात्री एक था और कथाकार बहुत थे। है ना महाराज जी, सारे कथा बता रहे हैं, अपना अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना अपना साक्षात्कार समझा रहे हैं, और उनके इतना प्रेम की वजह से लीला प्रकट हो रही है उनके सामने, तो साथ में कथाकार जो बोल रहे हैं वो लीला में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे पूरे ब्रज की यात्रा कराई उसको, और वो
गोपियों ने 6 महीना उद्धव जी को यहाँ घुमाया, हाँ, ब्रज में
6 महीना रहे
और सभी स्थान दिखाए, सभी लीला दिखाई, उद्धव जी यहाँ से संतुष्ट होके गए हैं,
मतलब सब रस का पान किया उन्होंने यहाँ पर गोपियों की कृपा से, सब गोपियां उनके गुरु बनी, वो केवल सुनते रहे रोते रहे सुनते रहे रोते रहे, और हर ब्रज का हर हर लीला स्थली पे ले जाकर बताया, इन्होंने यहाँ पर ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उतना आनंद जरूर दिया उन्होंने गोपियों को, दुख भरे गोपियाँ थी वो, उनको वो लीला का स्मरण करा के उन्होंने बड़ा आनंद दिया, तो वो उतना तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया उनका, ये देख करके मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो खुद का इलाज खुद कर रही हैं, मैं तो खाली खड़ा हूँ डॉक्टर के रूप में, है ना।
उन्होंने ये कह के भेजा था कि आप ब्रज में जाओगे महात्मा बन के आओगे।
यस सही, महात्मा बन गए वो।
उद्धव ने कहा था उद्धव ब्रज में जाके महात्मा बन के आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, हम चाहेंगे। तो यहाँ से प्रेम उद्धव जी को मिला
बिल्कुल
गोपियों द्वारा।
तो ऐसे कृष्ण जी का विचार था कि अभी ये भक्ति के ज्ञान की पाठशाला में पास हो गए हैं, अभी उनको प्रेम विद्यालय में PhD करने के लिए भेजना है, तो गोपियों के प्रेम विद्यालय में उनको भेजा, यहाँ पर 6 महीने का कोर्स किया उन्होंने।
इसको प्रेम पाठशाला भी बोलते
हैं। हाँ प्रेम पाठशाला, प्रेम विद्यालय यही है, प्रेम की पाठशाला में उन्होंने सब गोपियों से बोध लिया।
उद्धव जी को यहाँ प्रेम की शिक्षा मिली राधा रानी के द्वारा, राधा रानी को यहाँ पर गुरु माना, गोपियों को गुरु माना,
सही बात है बिल्कुल,
ये गुरु स्थान भी है उद्धव जी का।
यस बिल्कुल सही बात, दीक्षा स्थान है ये। तो ऐसे लीला है ब्रज की, हाँ जरूर, ये न जानते हुए कि इनका रोग इनका दुख कैसे दूर करें, ये न जानते हुए भी उन्होंने उनका दुख दूर किया, क्योंकि वो स्वयं उन्होंने सब जगह दर्शन कराया, और उसमें वो उसने समय के लिए वो आनंद में रहे, क्योंकि वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करते करते उनके संग का भी अनुभव कर रहे थे, फिर उद्धव जी चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी आपको समझ में आया ना यहाँ पर कांटे क्यों लगाए, हाँ तभी आप दंडवत करो, उस रज को माथे में लगाओ, रो के प्रार्थना करो कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी क्या योग्यता है, फिर भी हम यहाँ पर आए हैं, हमारी ना योग्यता होते हुए भी आप हमें अपने चरणों में रखो, अपनी सेवा दो, गुरु जी की सेवा दो, भक्तों की सेवा दो, जय जय श्री राधे
जय जय श्री
श्याम।
राधे।